earwaz.com, लाइक करें फेसबुक पेज earwaz, डाउनलोड करें फ्री earwaz ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी. फॉर मोर डिटेल्स विजिट earwaz.com.
खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं. ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है. उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा. प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए. आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं.
गुड मॉर्निंग. मसीह यीशु में आप सबको सुबह का सलाम. खुदावंद का नाम हम सब की जिंदगी में जलाल पाए. आप तमाम सामईन की खिदमत में बहुत बहुत अदाब और खुश आमदेद. हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हमारा साथ देते हैं और मेरा ईमान है कि खुदावंद के जिंदा कलाम से आप हर इतवार बरकत पाते होंगे. खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने अपनी बड़ी रहमत से हमें नया दिन दिखाया, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है. रेडियो मसीह का होस्ट का मजीन और रेडियो मसीह के प्रीचर जनाब पास्टर जेम्स लूक आपकी खिदमत में हाजिर हैं. प्रोग्राम को आप हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक AM 770 WTOR टोरंटो क्राइस्ट आवर किंग मिसिसागा की तानब से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है. आप प्रोग्राम को eawaz.com के जरिए भी सुन सकते हैं, eawaz.com के जरिए सुन सकते हैं और टेलीफोन के जरिए सुनने के लिए आप टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए. टोरंटो का नंबर है 647-872-4900, मॉन्ट्रियल में 514-907-6288 और कनाडा के दूसरे शहरों के टेलीफोन नंबर के लिए आप eawaz.com के जरिए दूसरे शहरों से टेलीफोन नंबर आप हासिल कर सकते हैं. फेसबुक के ऊपर आप masihkiawaz.com पे जाकर आप फेसबुक के ऊपर लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं. और आज का जो टॉपिक पास्टर जेम्स लूक साहब ने लिया है वो है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, रूहानी इख्तियार. तो देखते हैं कि खुदावंद का कलाम आज पादरी साहब के जरिए हमें क्या बताना चाहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये खुदावंद का जिंदा कलाम हम सब की जिंदगी में काम करता है अगर हम दिल लगाकर सुने और जो सुनहरी बातें खुदावंद के कलाम से पादरी साहब बताते हैं उस पर अमल करें. तो अजीजो आए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हस्ब मामूर दुआ के साथ शुरू करें और मैं पास्टर जी से कहूंगा कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करें. जनाब पास्टर जेम्स लूक साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो हैं वो आलमे बाला पर लगाएं, खुदा से राबता कायम करें. खुदा खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, शुक्र करते हैं खुदा खुदा एक और खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में तलू किया. क्या खुदा इस दिन में तेरी इबादत कर सकें, तेरा शुक्र अदा कर सकें. खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क कनाडा के लिए जिसमें हम आराम और चैन की जिंदगी गुजारते हैं. खुदावंद इस मुल्क को जो कि तेरी तालीम पे चलता है, आए खुदावंद इसको उसी तालीम पे चलने दें. वो के बहुत सारी खराबियां आए खुदावंद आ रही हैं, لیکن اے خداوند تو اپنی قدرت سے ان خرابیوں کو دور کر اور لوگ یہاں پہ آرام اور چین اور پیار محبت سے رہ سکیں. خداوند ہم شکر گزار ہیں اپنے اسٹوڈیو کے لیے, AM 770 کے لیے, ای آواز کے لیے, جس کے ذریعے سے یہ پروگرام لوگوں تک پہنچتا ہے اور اے خداوند لوگ اس سے بلیس ہوتے ہیں. ان کے سٹاف کے لیے ہم بہت برکت چاہتے ہیں. اسی طرح سے اے خداوند ہم تمام سننے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں جو اس وقت اپنے ریڈیو اور کمپیوٹر آن کر کے تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں تیرے پاکلام کے ذریعے سے. اے خدا ان سب کو فرزن فرزن برکت دے. اور اس وقت ہم ان تمام لوگوں کو نہیں بھولتے جو کہ کمزور یا بیمار ہیں. تیرا نام ایک شافی نام ہے, یسوع مسیح کے نام میں شفا پائی جاتی ہے اور لوگ بہت سارے اچھے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. اس بہن کے لیے جس کو COVID-19 تھی, اب وہ مکمل طور پہ صحت مند ہو چکی ہے, اپنے گھر جا چکی ہے. اسی طرح سے وہ بہن جو فیصل آباد میں ہیں جن کو کینسر کا مرض ہے, وہ بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں, شکر گزار ہیں. اپنے بھائی جمی ڈین کے لیے شکر گزار ہیں جس کو اے خداوند اتنی سرجریز کے بعد تو نے اچھا کیا ہے اور وہ صحت مند ہو رہا ہے. جو بھی کمی ہے اے خداوند اس کو بھی دور کرتے. ہم باقی دعا کرتے ہیں اے خداوند اپنے بھائی جو کہ ایلبنی میں ہیں, ان کی وائف جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں, ان کو ہارٹ کی ٹرابل ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اس کو بھی اے خداوند, اس بہن کو بھی تیرے سامنے رکھتے ہیں. اسی طرح سے اے خداوند اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غم زدہ ہیں, جن کے اے خداوند عزیز جو ہیں وہ تیرے پاس جا چکے ہیں. ان غم زدہ فیملیز کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے بھی ساتھ ہو. اسی طرح سے اے خداوند وہ بہن جو ایجیکس میں ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھائی جو مسیساگا میں ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بہن جو تھنڈر بے میں ہے, ہیوسٹن ٹیکسس میں ہے, پاکستان میں ہیں, اے خداوند وہ تمام لوگ جو کمزور ہیں ان پر رحم کر. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ اے خداوند لوگوں کے دلوں کو چھونے والا ہو, اور اے خداوند بخش دے کہ لوگ جو ہے اس پہ غور کر سکے اور اپنی زندگیاں جو ہیں اسی طرح سے بہتر کر سکے. یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں, آمین
آمین. اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ, ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو. خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں, تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے. ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی, وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے. آؤ خدا ان کے کاموں کو دیکھو. بنی آدم کے ساتھ وہ اپنا سلوک میں محیب ہے. اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا اور دریا میں سے پیدل گزر گئے, وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی. وہ اپنی قدرت سے اب تک سلطنت کرے گا, اس کی آنکھیں کاموں کو دیکھتی رہتی ہیں. سرکش لوگ تکبر نہ کریں. اے لوگوں ہمارے خدا کو مبارک ہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کروں. وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا. اے خدا سے ڈرنے والوں سب آؤ سنو اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے. میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا, اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا, لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے, اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا. خدا ہم نے اپنے زندہ اور مقدس کے نام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. عزیزو آئیں ایک خوبصورت گیت داؤد نبی کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں.
عزیزو آپ نے خوبصورت زبور سنا, اور جہاں زبور نویس ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی حمد و ستائش کرنی چاہیے, اسے دھن دھن باد کہنا چاہیے. آج پادری جیمز لوک صاحب نے جو میسج ٹاپک لیا ہے وہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, اسپرچل اتھارٹی, اور دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا کلام ان کے وسیلہ سے آج ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب پاسٹر جیمز لوک صاحب,
بہت شکریہ. ابھی ہم بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیٹ کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روحانی اختیار. روحانی اختیار, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس کے نام میں, آمین. سامعین, یہ روحانی اختیار جو ہے یہ کس کو ہے, کس کو ہو سکتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ روحانی اختیار جو ہے صرف خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور آج ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ روحانی اختیار کس کے پاس ہے اور وہ روحانی اختیار کیوں ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کرسمس کے سیزن میں سے گزرے ہیں, اور خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے, کس طرح سے وہ معجزانہ طریقے سے ان کی پیدائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 8 دن کے بعد ان کا ختنہ ہوتا ہے, ان کو ہیکل میں لایا جاتا ہے اور ان کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, اور وہاں ان کی ملاقات جو ہے وہ ایک شخص سے ہوتی ہے جس کا نام سیمیون ہے یا شماؤن ہے. اور وہ شماؤن جو ہے وہ اس کو خدا نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تیری موت نہیں آئی تھی جب تک خدا کے پرزنت کو یا خدا کے بیٹے کو یا خدا کی نجات کو نہیں دیکھے گا. تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ جب مقدسہ مریم اور یوسف سے ملتا ہے ہیکل سے باہر, ہیکل میں, تو وہ بچے کو اپنی گود میں لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا, میں نے تیری نجات دیکھ لی, اب تو مجھے رخصت کر. وہ ضعیف ہے, وہ بوڑھا شخص ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ واپس ناصرت چلے جاتے ہیں, اور ناصرت میں وہ اپنے والد کے ساتھ مدد کرتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا پیشہ جو تھا وہ ایک کارپینٹر تھے ان کے والد جو تھے, اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں کہ وہ اپنے والد کو وہ ہیلپ کرتے تھے فرنیچر بنانے میں. لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 سال کے ہوتے ہیں, اور وہ جب یروشلم میں جاتے ہیں تو ان کی بات چیت جو ہے بڑے علماء سے ہوتی ہے, اور وہ علماء جو ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ 12 سال کا بچہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جوان ہوتے ہیں, 30 ایئرس کے, 30 سال کے ہو جاتے ہیں جبکہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ ملتے ہیں, और हमने पीछे एडवेंट के सीजन में ये भी जाना था कि किस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो गुनाहों की माफी, गुनाहों से तौबा करने की मुनादी करता है, और जब खुदावंद यीशु मसीह उसको दरिया यर्दन पे मिलते हैं, जब वो बपतिस्मा दे रहा होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह जब वहां जाते हैं तो उससे बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा मतलब ये होता है डेडिकेशन, आप उस फैमिली में शामिल हो चुके हैं जो कि खुदा को पसंदीदा है। और उसके बाद हमें मालूम है कि उनकी आजमाइश होती है जब शैतान के साथ, और उस पर भी वो हावी होते हैं, और अब वो वापस अपने टाउन में आ चुके हैं जिसका नाम नासरत है। और हम ये देखना चाहते हैं कि आज जो मुकद्दस मरकस उसूल है वो हमें क्या बताते हैं। हम दो हवाला जात देखेंगे, एक पुराने अहदनामे से देखेंगे और एक नए अहदनामे से देखेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई एल्डर कमलडीन साहब से कि वो हमारे लिए ये बाइबल का हिस्से पढ़े। जी,
पुराने अहदनामे में से इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब और 15वीं आयत से 20वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूंगा। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। यह तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन पूरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बरपा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। यह खुदा उनका जिंदा कलाम। और दूसरा वर्स जो दिया गया है वो है लुका मरकस रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी
21 आयत से 28 आयत तक।
फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिल्प और सबत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा, और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि सहब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिल्प और उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई, और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है, वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती है। और फिल्प और उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाई में हर जगह फैल गई। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।
बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक आपके साथ पुराने अहदनामे का हवाला पढ़ा गया जो इस्तिश्ना की किताब यानी डिट्रोनमी 18 में कहा गया है, और ये मैं शुरू में ही बताता चलू अपने मुसलमान भाई और बहनों के लिए कि वो शायद ये सोचते हैं कि ये हवाला किसी और के लिए कहा गया है। आपको मालूम है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन आप सिर्फ ये सोचें कि ये हवाला जो है ये खुदा का कुदूस है, उसके लिए कहा गया है। तुम्हारे ही भाइयों में से मैं एक नबी पैदा करूंगा। और ये हवाला जो है ये पर्टिकुलरली खुदावन यीशु मसीह के लिए दिया गया है। तुम्हारे ही भाइयों में से, बाहर से नहीं, तुम्हारे ही भाइयों में से। तो मेहरबानी से इसको बड़ी एहतियात के साथ पढ़ें और आप जब देखें कि आप खुद ये फैसला करें कि खुदा का कुद्दूस है कौन। सिर्फ खुदा का कुद्दूस नहीं है, वो कलमा है कौन, वो खुदा की रूह है जिसमें, वो है कौन। हमें यही जानना है आज सुबह, और यही हवाला जो है हमें बताया जाता है कि किस तरह से वो एक आदमी जिसमें नापाक रूह है, ईवल स्पिरिट है, वो भी ये जानती है कि खुदा का कुद्दूस है कौन। हम इंसान होते हुए हमें खुदा ने अकल दी है, समझ दी है, और जब वहां पे लिखा हुआ है कि कोई उसको अगर गलत समझेगा तो वो कत्ल कर दिया जाए, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कह रही है। इसलिए हमें बड़ी एहतियात के साथ बाइबल मुकद्दस जब पढ़ते हैं तो उसको समझने की जरूरत है, और वो आप समझ नहीं सकते जब तक आपके दिलों में रूहुल कुद्दस जो है वो काम ना करे। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं कफरनहूम से। लिखा हुआ है कि फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए। अब कफरनहूम जो है वो कहां पे है? अगर आपको ज्योग्राफी का पता है तो इसराइल में तीन सूबे, उस वक्त चार सूबे भी बहुत मशहूर थे, और ये जो अगर आप साउथ में देखें तो यहूदिया का सूबा आता है जिसमें यरूशलेम है, और उसके बैतुल, उसको बैतुल कुद्स भी कहा जाता है, और फिर उससे आप नॉर्थ में चलते जाएं तो सामरिया का सूबा आता है, और फिर जो नॉर्दर्न बिल्कुल नॉर्थ है उसमें गलील का सूबा आता है। लेकिन उन दिनों में यह होता था कि सूर और सैदा जो आज मुल्क ऊपर है, सीरिया है और उसके साथ लेबनान है, वो भी इसराइल में शामिल थे। तो वहां पे जो सूबा बनता है वो फिनके का या फिनिशियन प्रोविंस बनता है जिसमें सूर और सैदा के सिटीज भी थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज जो है वो कफरनहूम से, यानी गलील से किया है। उनका अपना टाउन जो था वो भी गलील में था, जिसका नाम नासरत है, तभी वो यीशु नासरी उनको कहा जाता है। और हमारे मुसलमान भाई तो क्रिश्चियंस को भी नसार कहते हैं, क्योंकि हम जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो नासरत जो था वो वहां से इसलिए नहीं शुरू किया था क्योंकि नासरत एक बहुत छोटा सा शहर था। लेकिन जब आप इसराइल की झील जो है, जो जिसको गलील की झील कहा जाता है, यानी वो झील जो है उसके, आपको मालूम है कि उसके इर्द गिर्द काफी खूबसूरत शहर थे, और ये कफरनहूम जो था ये एक मेट्रोपोलिस था उन दिनों में। यहां पे काफी तजारत होती थी और लोग यहां पे, इट वॉज अ हसलिंग बसलिंग टाउन। तो आपको मालूम है कि ऐसी जगह से मिनिस्ट्री शुरू की जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको जान सके। एक तो वजह यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह का अपना इलाका था, दूसरी वजह यह थी कि वहां पे वो जो था वो एक बड़ा हसलिंग बसलिंग टाउन था, और वो गलील की झील के बिल्कुल किनारे पे है, और अब भी हम जाते हैं तो उसको देखते हैं, लेकिन अभी वो खंडरात है तो अभी उसमें कुछ नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वहां पे मुकद्दस पत्रस जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह के बाद में शागिर्द बनते हैं, उनका घर भी वहीं पे है, और उनके घर के साथ ही एक इबादत खाना है जिसको सिनागॉग कहा जाता है। ये इबादत खाना था क्योंकि उस वक्त मसीहत थी नहीं, उस वक्त ये समझा जाता था कि मसीहत जो है वो ये एक एक तरह से एक यहूदियत का एक सेक्ट है जिसको द वे कहा जाता था या एक रास्ता कहा जाता था। इसलिए खुदा यीशु मसीह भी क्योंकि उनकी बैकग्राउंड भी यहूदियत से थी, इसलिए उनके शागिर्द भी सारे यहूदी थे, इसलिए उनको इजाजत होती थी कि वो इबादत खाना में आके तो वो तालीम दें, और वो खुदा यीशु मसीह वहां पे तालीम देते हैं तो क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उसके लिए प्रोफेसीज की गई थी। मैं एल्डर साहब से दरखास्त करूंगा कि यशायाह नबी का सहीफा उसका नवा बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत हम देखना चाहते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। यशायाह नबी का सहीफा नवा बाब और पहली और दूसरी आयत जो है,
उसने कदीम जमाना में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया के सिम यर्दन के पास बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साये के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका।
बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेसी हो चुकी थी कि एक रोशनी आने वाली थी, और जब हम मत्ती रसूल की इंजील उसका चौथा बाब और बारहवीं आयत से सुनते हैं तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वाया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा जो झील के किनारे जबुलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि जबुलून का इलाका नफ्ताली का इलाका दरिया के रह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। ये वजह थी वहां से खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो अपनी तालीम जो है वो शुरू की है, क्योंकि वो इलाका सारा का सारा जो था वो पेगन वर्ल्ड था। ये फिनिशिया का इलाका, सूर और सैदा का इलाका, गलील का इलाका, ये तमाम का तमाम जो था ये खुदा को नहीं मानते थे। ये लोग जो थे ये बुत परस्त थे, इसलिए ये जरूरत थी कि वहां पे वो तारीकी जो छाई हुई थी वहां पे एक रोशनी मिले। और खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने पिछली दफा बताया था कि वो दुनिया के नूर हैं, और उसकी एक निशानी हमें क्या मिलती है कि जब वो वहां पे आते हैं तो एक शख्स है जो वहां पे आता है उसमें नापाक रूह है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप बुतों की परस्तिश करते हैं तो वो नापाक रूहें जो है वो ही आपको गाइड करती हैं और वही आपको तंग करती हैं, वही आपकी जिंदगी में एक अंधेरा छा जाता है। और यहां पे एक शख्स है जो कि उसमें नापाक रूह है, और वो नापाक रूह जो है उसमें आती है और वो क्या कहता है, वो जानता है कि ये शख्स है कौन। जिस तरह के सिमियन को, जब वो खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल गोद में थे, सिमियन को पता चलता है कि ये बच्चा है कौन, इसी तरह से ये नापाक रूह जो है ये इवन द इवल वर्ल्ड नोज। और मेरे भाई, इवन द इवल वर्ल्ड नोज के जीसस क्राइस्ट है कौन। वो क्या कहता है कि तू खुदा का कुद्दूस है, खुदा का कद्दूस है। और यही बात जो है हमें आज जाननी है कि वो खुदा का कद्दूस है कौन, क्योंकि वो उसमें से, क्योंकि वो जब हुक्म देते हैं उस नापाक रूह को तो वो उसको छोड़ के वहां चली जाती है। वो कहते हैं कि पस नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और सब लोग हैरान हो गए। हमें मालूम है कि हम बड़ी जल्दी हैरान हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी हम परेशान भी हो जाते हैं। अभी हमें ये भी एक नापाक रूहें हैं जो कि इस वक्त इस दुनिया में छाई हुई हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि पेगन वर्ल्ड है, जो कि बुतप्रस्त लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो जिंदा खुदा को नहीं मानते, ना वो समझना चाहते हैं। इवन मैं यहां तक कहूंगा कि ये कोविड 19 जो है ये भी डेविल की वजह से आया हुआ है, ताकि दुनिया को तंग करे। डेविल का काम क्या है? उसका काम यह है, वो दंदनाता फिरता है, वो शेर की मानंद है, वो ताकि पकड़े और उसको डिवोर करे, उसको तबाह करे। कोविड 19 क्या कर रहा है आपके लिए? हम उससे छुपे बैठते हैं, अपने मुंह छुपाए फिरते हैं, घरों में बंद हैं, और ये भी शैतान का हमला है। ये शैतान का हमला है, ये रूहानी कुवतें हैं जो डार्कनेस हैं, ये वही तारीकी की कुवतें हैं जो हम पे छाई हुई हैं। लेकिन जैसे अभी पढ़ा गया कि एक रोशनी होने वाली थी, और वो रोशनी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है। आज भी वो रोशनी जो है वो उन लोगों से पूछें जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, और जब उन्होंने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है तो उनकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी आ जाती है। क्या आप आज वो रोशनी चाहते हैं? क्योंकि हमें गलतियों का खत उसकी चौथा बाप और चौथी आय जो है वो मैं चाहूंगा कि कमल साहब फिर आप पढ़ें जरा।
लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ।
यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से पौलुस रसूल भी हमें यही बात बताते हैं, और यहाँ पे जो हमें बात बताई जा रही है उसमें 14 और 15वीं आयत भी यही कहते हैं कि जब यूहन्ना पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करो मेरे भाई और मेरी बहन, आज वक्त आ गया है कि हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें उस खुदा के कुद्दूस को जानने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगियों में उस कुद्दूस को ला सकते हैं, और वो कैसे ला सकते हैं? वो सिर्फ आप अपने घुटनों पे जाएं, खुदा से दुआ करें, खुदावंद मैं तेरे कुद्दूस को जानना चाहता हूं, मैं तेरे कुद्दूस को जानना चाहती हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदा का कुद्दूस उस रूल कुद्स के जरिए से आपकी जिंदगी में जाहिर होगा, वो आपसे बातचीत करेगा, और बातचीत करने के बाद आपकी जिंदगी जो है उसमें इतनी तब्दीली आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा जो है वो किस तरह से आपके दिलों में काम करता है। ये रूहानी इख्तियार जो है वो सिर्फ एक शख्सियत को है, और उसका नाम यीशु मसीह है। ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी किसी और के पास नहीं है, क्योंकि हमें बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियरली बताती है, रसूलों के इमाल उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत जो है वहां पे लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सके। मेरे भाई और मेरी बहन, ये बड़ी खुशाइन बात है। आप YouTube पे जाके देखें, अब बहुत सारे मौलवी साहबान ये कहना शुरू हो गए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिसको वो हजरत ईसा कहते हैं वही सबसे बड़े हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि वो सिर्फ खुदा नहीं है, वो सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि खुदा है जो इंसान बन के इस दुनिया में आया है। और जब हम खुदा को पुकारते हैं तो हम खुदा के साथ हमारा मेल हो जाता है, और यही बात है कि हमें शख्सी तौर पे ये जानने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि खुदा का कुद्दूस है कौन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन
आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जो पाई साहब ने दिया कि और खुदावंद को यीशु मसीह को स्पिरिचुअल अथॉरिटी है बीमारों पर बदलुओं पर आने वाली चीजों पर आने वाले वक्त पर, क्योंकि जैसा उन्होंने आयत पढ़ी अमाल के किताब में कि आसमान तले हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय यीशु मसीह के जो था है और आने वाला है। अजीजों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का पैगाम आज का कलाम आपके दिल में घर बनाएगा और आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। अगर हम हकीकी तौर पर जिस तरह उन्होंने कहा है कि अपने घुटनों पर चले जाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा यीशु मसीह से कहें कि ऐ खुदा मेरे माजी के हाल के मुस्तकबिल के गुनाहों को मुआफ कर, और वो मुआफ करता है क्योंकि उसने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। वो हमेशा अपने बाजुओं को पिसारे खड़ा है और वो दावत देता है कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज वक्त है कि हम उसे अपनी जिंदगी का बादशाह कबूल करें ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए आने वाली दुनिया के लिए अपने आप को महफूज कर सकें और उनके वादों पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाएं। अजीजों आए एक खूबसूरत जबूर सुनते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
واقعی زبور نویس یہ فرماتے ہیں کہ دائم یہوہ قائم رات اس کا تخت ہے, ہمیشہ تک اس کا تخت رہے گا, جب تک سورج اور چاند ستارے ہیں سب اب ہمیشہ تک ابدی تخت خودم یسوع مسیح کا ہے. آج ہم نے ان کی اتھارٹی کے متعلق سنا کہ ان کو کتنا اختیار ہے, اور اسی اختیار وہ خودم یسوع مسیح جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور پاک روح کے ذریعے ہمیں بھی دیتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح خودم یسوع مسیح کے قدموں پر چل کے اس کے ساتھ زندگی گزاریں اور یہ برکتیں حاصل کریں اور دوسروں تک یہ برکتیں بانٹیں. عزیزوں, میں اپنی طرف سے پاری صاحب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر اتوار صبح 8 سے 9 بجے تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور خدا ان کے زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں, کیونکہ خدا ان کا کلام زندگی بخش کلام ہے. میرا نام کمل دین ہے اور پاسٹر جیمز لوگ, جیسے کہ ہر اتوار ہم دونوں آتے ہیں آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ کلام لے کر, ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو جیسے سنتے ہیں ہر اتوار اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ ہر اتوار AM 770 WTOR ٹورنٹو سے یہ اردو مسیحی پروگرام یہ نشر ہوتا ہے, اور جس سے بہت سے لوگ خدا ان کے زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں. آپ پروگرام کو eawaz.com کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں, eawaz.com کے ذریعے اس پروگرام کو سن سکتے ہیں, اور ٹیلی فون کے اوپر سننے کے لیے آپ ٹورنٹو کا نمبر ہے 647-872-4900, اور منٹریال کا میں ٹیلی فون نمبر ہے 514-907-6288, اور کینیڈا کے دوسرے شہروں کے لیے آپ ٹیلی فون نمبر eawaz.com کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر دیکھنے کے لیے لائیو پروگرام جسٹ لاگ ان ٹو www.masikiawaz.ca, اور اگر آپ نے ہم سے کوئی بات چیت کرنی چاہیں تو جسٹ connect@masikiawaz.ca پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈونیشن بھیجنا چاہتے ہیں چرچ کو پروگرام کے لیے, تو آپ کرائسٹ آور کنگ لوتھرن چرچ 2150 ڈنڈا اسٹریٹ ویسٹ مسیساگا L5K1R5 ہمارے چرچ کا ایڈریس ہے, اور ٹیلی فون نمبر ہے 905-822-8931. 905-822-8931 चर्च का टेलीफोन नंबर है। और अगर आज के मैसेज के हवाला से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या फर्दर इंफॉर्मेशन कलाम के मुतालिक लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जनाब पास्टर जेम्स लूक से राबता करें। उनका टेलीफोन नंबर है 416-454-2581। और चर्च की कोई इंफॉर्मेशन, रेडियो प्रोग्राम के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं, पादरी साहब से भी कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 647-339-0397। मेरा टेलीफोन नंबर है। उम्मीद करते हैं कि आप खुदामंद में सब आपके खानदान को खुदामंद अपने परों के साया के नीचे रखे। और हमारी ये दिली दुआ है कि ये जल्दी खत्म हो ताकि हम रेडियो स्टेशन पे जाके आपसे बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी तक जैसा आप जानते हैं कि पादरी साहब को आप फेसबुक के ऊपर लाइव देखते हैं, अपने अपने घर से करते हैं, हम आपके टेलीफोन कॉल नहीं ले सकते। सो आप दुआ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, खुदा मन करे कि जल्दी इस पैंडेमिक खत्म हो ताकि हम अपने अपने अजीजों से मुलाकात भी कर सकें और खुदा मन के घर इबादत गाहें खुल जाए ताकि हम वहाँ कोऑपरेट वर्शिप के लिए वहां जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा कलाम, कलाम तो खैर है ही अच्छा, बड़ी सुनहरी बातें आप बताते हैं हमें, लेकिन जिस तरह मेरे जहन में ये क्वेश्चन है, इसी तरह और के और लोगों के जहन में भी ये सवाल आ सकता है और वो पूछना चाहते होंगे, व्हेन जीसस इज द होली वन देन व्हाई डोंट पीपल एक्सेप्ट हिम। जब खुदा यीशु मसीह बहुत मुकद्दस और पाक है और फिर लोग उसे क्यों कबूल नहीं करते, इसके मुतालिक जरा आप बताएंगे मुझे।
मैंने जैसे पहले भी ड्यूरिंग द मैसेज मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया जो है ये शैतान कब्जे में है
जी।
और इंसान जो है वो भी सब शैतान के कब्जे में है, हालांकि वो जो इवन द इवल वर्ल्ड नोज, जैसे हमने अब आज के वाकये में देखा है कि वो शख्स जिसमें के बदरू है वो भी जानता है कि खुदा का कुदूस है कौन। तो हमारे दिलों पे, हमारे जहनों पे वो शैतान का कब्जा है जो ये जानने की हमें सलाहियत नहीं देता कि खुदावन यीशु मसीह जो है वही खुदा के कुदूस हैं। और जब तक हम वो जो शैतानी हमला है वो हमारे दिलों और दिमागों से उतरेगा नहीं, उस वक्त तक हम ये नहीं जान सकेंगे। इसलिए ये दुनिया में रहते हुए लोग जो उनको कबूल नहीं करते वो इसी वजह से कबूल नहीं करते।
लेकिन आपने कहा कि आपने कहा कि खोलते हैं जो हमला है
उसी के सामने, तो फिर हमें समझ में आती है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप?
तो ये किस तरह उतर सकता है शैतानी हमला,
किस तरह हो सकता है?
किस तरह ये उतर सकता है?
ये एक सोच है जो आपकी है। तो आप देख लीजिए कि जो लोग वो सोचते समझते ये हैं कि वो शायद जो डेविल है, जो शैतान है, वो बड़े ट्रिकी तौर पे क्राफ्टी सिचुएशन के साथ तो आपको वो करता है, आपको कहता हो, तो आपके दिल और दिमाग में ये होता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। सही वही होता है जो कि हमें बाइबल मुकद्दस बताती है।
मैं यही भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि इस जो ये कब्जा है या ये बोझ है, ये किस तरह हम उतार सकते हैं, उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं?
उससे छुटकारा मैंने जैसे बताया था कि आप एक ही सूरत में कर सकते हैं कि जब अपने घुटनों पे जाए, अपने गुनाहों से इकरार करें, खुदा से माफी मांगे, क्योंकि हम सोचते ये हैं कि शायद हम सही राह पे हैं, लेकिन हम हैं नहीं। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से
महरूम है।
और जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम यही जानते रहेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, जबकि वो सही नहीं है। और जैसे मैंने बताया था कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता जो है खुदा यीशु मसीह के जरिए से है, वही खुदा का कुद्दूस है, उसके अलावा कोई और शख्सियत है नहीं। कोई आपको बचा नहीं सकता, वो खुद नहीं बचे तो उन्होंने किसी को क्या बचाना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत ऐसी है जिसने मौत पे फतह हासिल कर ली।
आपने बताया कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमारे सच्चे दिल से तो वो हमारे बोझ को हटा देता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ भी भाई सब चलना है, हर रोज दुआ करनी है, हर रोज कलाम पढ़ना है, हर रोज उसकी नजदीकी में आना है, फिर हम इस दुनिया में उस दुश्मन से बचाए जा सकते हैं। क्योंकि माफी तो खुदा दे देता है, क्योंकि उसके बाइबल में बड़े हवाला जात है, मैं दे सकता हूँ, जहाँ खुदा दावत देता है और वो खुद उसने खुद कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे हर गेट निकालना दूंगा और मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। छीन कौन सकता है? दुश्मन, और वो छीन नहीं सकता। फिर हमें उसका मुकाबला हर रोज करना है, हर रोज दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है, उसके गहराई में जाना है, और फिर खुदावंद की बरकतें हमें मिलती हैं और दुश्मन हमारी जिंदगी से, हमारे घरों से हमेशा के लिए दफा दूर हो जाता है। और वो जानता है कि इस घर में, इसकी जिंदगी में कौन रहता है, वो जानता है कि कौन है। यीशु मसीह को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, जैसा कि हवाला जात में मैंने पढ़ा दिया। तो आज हमें जरूरत है, जैसा आप कहते हैं, कि खुदावंद के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें और अपनी जिंदगी को तब्दील करें। हमारी शक्ल और सूरत तो वही रहती है, लेकिन बातनी जिंदगी जो है वो हमारी तब्दील हो जाती है, और फिर लोग देखते हैं कि ये वाकई वो इंसान था, ये वाकई वो मर्द और औरत थी जो इस तरह थी, अब बदल गई है। जब इंसान बदल जाते हैं तो इंसान की जिंदगी से अच्छे काम, रूह के फल नजर आते हैं, और रूह के फल आप जानते हैं, अक्सर आप कहते हैं कि मैं ये कोट करता हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जैसा कि आप सुना है कि टेलीफोन आ चुका है, कि वक्त खत्म हो गया, खुदावंद आपको, हम सबको अपनी पनाह में रखे, और खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हम दोनों को भी अपनी दुआओं में याद रखें, कि हमें खुदावंद हिम्मत दे, अकल फहम और समझ दे, ताकि हम दिल की गहराई से, रूह की पाकीजगी से आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर कर सकें। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।
मौजूद सामीन, हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने प्रोग्राम मसीह की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपने बहुत बरकत पाई होगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने अजीजों कारिब का ख्याल रखें। अगले इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा ने के बान, मसीह यस्सू का फजल आप सब पर हो, आमीन।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
कुछ दोस्तां ते गुआंढियां नूं मिलना, काम तों बाद सहकर्मियां नाल समां बिताउणा, किसे दोस्त दे व्याह विच जाणा, इह सब नुकसानदायक तां नहीं हन, पर इही ओह चीज़ां हन जो ओंटारियो विच कोविड-19 मामलियां दे महत्वपूर्ण वाधे विच योगदान पा रहियां हन। समूहिक तौर ते फैलाव कारण बहुत लोग बीमार हो रहे हन, जिस नाल साडे हस्पतालां दा मरीजां नाल भरन दा खतरा है, अते इह सब नूं जोखम विच पा रहा है। टीके साडी रक्षा विच सहायता करनगे, पर जदों तक इह सारयां लई उपलब्ध नहीं हो जांदे, सानूं सब नूं जनतक सिहत सलाह अते दिशा निर्देशां दी पालना करनी पवेगी। भाव सिर्फ जरूरी कारना ही घर तो बाहर निकलना होगा, जिवें कि करियाना खरीदने लई, घर रहो, सुरक्षित रहो, जिंदगियां बचाओ। ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया।
सुपर फैन विद ए सुपर डील, द आई हार्ट विंटर सेल्स इवेंट इज ऑन नाउ। डोंट पे फॉर 90 डेज ऑन ऑल न्यू कार्स ओएसी एंड नो चार्ज ऑल व्हील ड्राइव ऑन सेलेक्ट मॉडल्स। Frontline workers receive 2% above invoice pricing on all new cars in stock. Your safety is our number one priority. We have masks and gloves ready for you. Looking for a Hyundai? I'm your guy. Visit nabatiashyundai.com. Now 3 locations to serve you. This is Superfan Nab Bhatia. You are listening to 770 AM. For Hyundai, call Shah Ahmed. 416-817-2720.
CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही cibc.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50। शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
हॉटस्टार तो हड्डे करामिच लिया रहा है पंजाब 24/7 पंजाबी एंटरटेनमेंट सागा हिट्स चैनल दे जो छेती आ रहा है हॉटस्टार दे सुपर हिट पंजाबी फिल्मा दे प्रीमियर देखो हर हफ्ते धमाकेदार चार्ट बस्टर्स दे नचो मानो मशहूर हस्तियां दे इंटरव्यू कॉमेडी क्लब अते बहुत कुछ तो अब सिर्फ देखो नहीं वेखो सब्सक्राइब करो हॉटस्टार सिर्फ 49.99 विच ते सारा साल पाओ पंजाबी एंटरटेनमेंट अते बहुत कुछ।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने या सलाह लैण लई अज ही